ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम कैंटो 5 चैप्टर 12 श्लोक नंबर 1। रघुगणा उवाच नमो नाम करना विग्रहाय किताब स्वरूप तुचिकृता विग्रहाय नमो वदूत बीज बंधु लिंग निगूत नित्यनुभावया तोभ्याम नमो नमः करना विग्रहाय स्वरूपात चिकृत विग्रहाय नमो वदूता बीजबंध लिंग निगूद नित्यानुभवाय तोभ्याम नमो नमाकरण विग्रहाय स्वरूपात चिकृत विग्रहाय नमो वदूता द्विजबंधलिंग निगूद नित्यानुभवाय तुभ्यं। देखो मेरे कमरे में तो नहीं है किसान, पर कोई उच्चारण नहीं कर रहा। माता जी कोई नहीं, माता जी शब्दार्थ
रघुगण वाच राजा रघुगण ने कहा नमः मेरा नमस्कार है, नमः नमस्कार कारण विग्रहाय समस्त कारणों के कारण परमात्मा से प्रकट होने वाले स्वरूप तुक्षीकृत विग्रहाय अपने सत्य को प्रकट करके शास्त्रों को विरोधों को दूर करने वाले। नमः नमस्कार अवधूत। हे जोगेश्वर तुज बंधु लिंग ब्राह्मण कुल में उत्पन्न पुरुष के लक्षणों के द्वारा भले ही ब्राह्मण का कर्म न करता हो, निगूढ़ प्रछन्न नित्य अनुभवाय उसे जिसका शाश्वत आत्म साक्षात्कार होता हो, तो व्याम तुम है। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। राजा रघुवर ने कहा, हे महात्मा, आप श्री भगवान से अभिन्न हैं, आपके प्रभाव से शास्त्रों के समस्त विरोध दूर हो गए हैं, आप ब्रह्म बंधु के वेश में अपने दिव्य आनंदमय स्वरूप को छिपाए हुए हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य, ब्रह्म संहिता से ज्ञात होता है कि श्री भगवान समस्त कारणों के कारण सर्व कारण कारणम हैं। ऋषभ देव सर्व कारण स्वरूप श्री भगवान के साक्षात अवतार थे, उनके पुत्र भरत महाराज को, जो ब्राह्मण जड़ भरत की भूमिका निभा रहे थे, उनका शरीर उन्हीं सर्व कारणों के कारण से प्राप्त हुआ था, इसलिए उन्हें कारण विग्रहाय कहा गया है।
ओम ज्ञानांजनाशलक्या चक्षुर्मीलितानेन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोव्यस्तं साबितामीन स्वयं रूपा कदायं व्याह। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आज सबको सुनाई दे रहा है पीछे, क्योंकि जैसे मैंने कहा पिछले दो हफ्तों से मैं गला बैठा हुआ है, तो ज्यादा जोर से मैं बोलना नहीं चाहता। नमो नमः कर्ण विग्रहाय स्वरूपात् कृते कृत विग्रहाय नमो उपद्रुत द्विज बांधु लिंग निगूद नित्यानुभवाय तुभ्यं। सुमहाय रोगिना इस श्लोक का उच्चारण कर रहे हैं, और महाराज रोगिना इस श्लोक में जन भारत की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। जद भारत, जैसे प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में समझाया है, पूर्व जन्म में क्या थे, भारत महाराज थे। और भारत महाराज कौन थे, वो भगवान ऋषभ देव के सबसे बड़े बेटे थे। भगवान ऋषभ देव क्योंकि स्वयं भगवान हैं, उनकी बड़ी औलाद थी, 100 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े बेटे का नाम था ऋषभ भारत। और जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझा रहे हैं, ऋषभदेव जी कौन थे, स्वयं भगवान थे। भगवान के अवतारों का वर्णन आप वैदिक शास्त्र में प्राप्त करते हो, ये नहीं कि कोई व्यक्ति ये दावा कर ले कि मैं भगवान का अवतार हूं, वो भगवान का अवतार मान जाएगा। मैं 2 दिन पहले मुझे सूरत में था, तो हम सूरत रेलवे स्टेशन में थे, तो वहां एक बुक स्टॉल था, किसका, दादा भगवान का। तो उनके स्टेशन से पूछा, कौन है दादा भगवान, अवतार है भगवान के। तो ऐसे कलयुग में कई अवतार हैं, पर जो प्रमाणिक अवतार हैं उनका वर्णन कहां प्राप्त होता है, शास्त्र में। अवतारों के छह विभाग है। पुरुषावतार, ये वो अवतार है जिसके द्वारा भगवान सृष्टि का निर्माण करते हैं। फिर गुणावतार, युगावतार, शक्तवेश अवतार और मनमंत्रा अवतार। अवतार का अर्थ है जो कि प्रकट होता है भगवान के धाम से। भगवान ऋषभदेव के पिता का नाम था महाराज नाभि और माता का नाम था मेरु देवी। तो एक समय महाराज नाभि और मेरु देवी बड़ी तपस्या कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे। उनके मन में यह भाव था कि भगवान जैसा हमें पुत्र प्राप्त हो। वासुदेव देव की भी इच्छा थी कि परम भगवान पुत्र के रूप में प्राप्त हो। तो उन्होंने 12,000 देवताओं के वर्षों के लिए कुछ खाया नहीं, बड़ी गहरी तपस्या उठाई। इतनी गहरी तपस्या कि केवल वो पत्ते खाते थे जो पेड़ों से गिरते थे और हवा ले रहे थे सांस के लिए। तो जब भगवान ऋषभदेव के पिता महाराज नाभि, उन्होंने भी बड़ी तपस्या की थी और भगवान उनकी यज्ञ से बड़े प्रसन्न हुए और भगवान ने कहा कि अगर तुम्हें मेरे जैसा पुत्र चाहिए, ये असंभव है, मैं ही तुम्हारा पुत्र बन जाऊंगा। और भगवान प्रकट हुए ऋषभदेव के रूप में। ऋषभदेव का अर्थ है सबसे प्रसिद्ध, सबसे अच्छा। और सबसे प्रसिद्ध और अच्छा कौन है? केवल भगवान ही हो सकते हैं। तो श्रीमद् भागवतम के पांचवें स्कंद में अब भगवान ऋषभदेव जी की शिक्षा प्राप्त करते हो। भगवान ऋषभदेव जी ने कहा, ना हम देह बाजम लोके। ये मनुष्य जीवन बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है, इसका हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। पर किस लिए उपयोग करना चाहिए? तपो देवियम पुत्र का ये न सत्व, भगवान की खुशी के लिए तपस्या का पालन करना चाहिए। तो भगवान ऋषभदेव ने पृथ्वी पर शासन किया और उसके पश्चात उन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र जिनका नाम था भारत महाराज, उन्हें जिम्मेदारी सौंपी और वो गए जंगल में और गहरी तपस्या का पालन करने के लिए। भारत महाराज ने शास्त्रों की शिक्षा के अनुसार पृथ्वी का शासन किया, हजारों सालों तक शासन किया। हर प्रकार की सुविधा थी, पर शासन करने के पश्चात उन्होंने जिम्मेदारी त्याग कर अपने बेटे को सौंपी और गए जंगल में, जहां की जैसे आप सुन बैठे हो, एक हिरण के प्रति वो आकर्षित हो गए थे और फिर उन्हें जन्म लेना पड़ा हिरण के रूप में। पर क्योंकि उन्होंने भक्ति भी की थी, ज्यादा देर इस हिरण के रूप में नहीं रहना पड़ा, उन्होंने जल्द जन्म प्राप्त किया एक ब्राह्मण कुल में, जिनमें उनका नाम क्या था? जद भारत। तो महान रूगना धार्मिक विचार के राजा थे, जिन्हें पलकी में उठाकर उनके सेवक ले जा रहे थे कृष्ण कथा सुनने के लिए, कपिला आश्रम में ले जा रहे थे। और महान रूगना चाहते थे कि वो जल्दी चलें, और इसलिए जद भारत को जोड़ा गया था सेवा में पलकी को तेजी के साथ भगाने के लिए। प्राचीन समय में जो राजा थे, राजा के प्रतिनिधि थे, उन्हें पलकी में उठाया जाता था और महाराज को पलकी में ले जा रहे थे उनके सेवक। जद भारत दूसरे सेवकों के समान नहीं था, वैष्णव था उच्च कोटि का। और वैष्णव जो है सबका मित्र है, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता। इसलिए जब भारत इतने ध्यान से अपने पैरों को पृथ्वी पर रख रहा था कि कोई चींटी भी नीचे नहीं आ जाए, जिसके कारण पलकी तेज जाने के बजाय धीमे जाने पड़े। राजा को जब पता लगा कि इसका कारण ये नया व्यक्ति जैसे जोड़ा है जद भारत है, तो राजा ने जद भारत को डांटा, कहा तुम जान देने में कौन हो। जद भारत ने शुरू में तो सह लिया, फिर जब उसने उपदेश देना शुरू किया, महाराज रघुनाथ जिनके पास गहरा आध्यात्मिक ज्ञान था, वो समझ गए कि ये सेवक कोई बुद्धू नहीं है, मूर्ख नहीं है, पर क्या है, आत्मज्ञानी व्यक्ति है। तो महाराज अभी पलकी से नीचे आए, उन्होंने कहा कि मुझे इंद्र के थंडरबोल्ट का भय नहीं है, तो मुझे किस चीज का भय है, वैष्णव के प्रति अपराध करने के लिए। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। आप इस विषय में चैतन्य चरितमृत में एक कथा पढ़ते हो कि चैतन्य महाप्रभु जी जो अत्यंत दयालु थे, जब उन्हें पता लगा कि उनकी मां के हृदय में थोड़ा क्रोध है किसके प्रति, अद्वैताचार्य के प्रति, तो खुश नहीं थे। उन्होंने कहा कि मैं तो सब पर दया दे रहा हूं, पर जब तक मेरी मां के विश्वभाव हृदय में ये क्रोध रहेगा अद्वैताचार्य के प्रति, उन्हें भगवत प्रेम प्राप्त नहीं होगा। भगवान ने कहा, और सच्ची माता के हृदय में क्रोध क्यों था, वो सोचती थी कि मेरा बड़ा बेटा घर से निकला अद्वैताचार्य की संगत के दुख द्वारा, और छोटा बेटे ने भी संन्यास लिया अद्वैताचार्य की संगत के कारण, तो उनके हृदय में थोड़ा क्रोध था। फिर जब भगवान ने देखा कि सच्ची माता अद्वैताचार्य के चरणों की धूल ले रही है, तो वह बड़े प्रसन्न हुए। तो दूसरे शब्दों में कई उदाहरण है हमारे शास्त्रों में जिसमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। तो रघुनाथ जद भारत के शरणागत हो गए और उन्होंने उनसे ज्ञान की भीख मांगी, और पिछले अध्याय 11वें अध्याय में जद भारत में महान रघुनाथ को आध्यात्मिक शिक्षा दी, जो कि वो आगे इस अध्याय में भी देंगे और आगे 13वें-14वें अध्याय में भी देंगे। और महान रघुनाथ ने इस शिक्षा बड़ी विनम्रता से ग्रहण की। तो इस श्लोक में वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं ओ महात्मा। तो महात्मा किसे कहते हैं, प्रभुपाद जी ने कई बार इस विषय की चर्चा की, महात्मानस से माम पड़ता। महात्मा वो व्यक्ति है जो कि जुड़ा हुआ है किसमें, भगवान की सेवा में, वो है महात्मा व्यक्ति। ये नहीं कि कोई प्रसिद्ध राजनीतिक नेता हो तो हम उसको रबर स्टम्प कर दें महात्मा। महात्मा उसे कहते हैं जो व्यक्ति दिन रात तन मन धन से जुड़ा है किसमें, भगवान की सेवा में। तो यहां रघुनाथ जद भारत को क्या बुला रहे हैं, महात्मा। कह रहे हो महात्मा तुम परम भगवान से अभिन्न हो। आपने शास्त्रों में देखा होगा कि कई स्थानों में भगवान के भक्तों को भगवान बुलाया जाता है, नारद मुनि को भी भगवान कहा जाता है। तो आप पूछ सकते हो ये भगवान कैसे बन गए, हमारा तो सिद्धांत है कि हम हमेशा भगवान के सेवक ही रहेंगे, ज्वेर स्वरूपा या कृष्ण नित्यदास, तो आप कैसे कह रहे हो भगवान बन गए। उन्हें भगवान इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो 100% समर्पण करते हैं अपने जीवन को भगवान की शिक्षा पर, और जो उपदेश देते हैं वो भी 100% है क्या, भगवान की शिक्षा पर। तो महाराज रूबिना जन भारत को इस श्लोक में महात्मा बुला रहे हैं, और आप भगवान से अभिन्न हो। तो जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं भगवान से अभिन्न हैं, क्योंकि उनके मन में 24 घंटे एक ही भाव रहता है। और क्या है वो भाव, क्या है वो भाव, कृष्ण भक्ति का। उनके मन में कृष्ण भक्ति के अलावा और कोई भाव नहीं रहता। अगर वो किसी खूबसूरत वस्तु को देखते हैं तो उस खूबसूरत व्यक्ति वस्तु के विषय में क्या सोचते हैं, हम कैसे इसे भगवान की सेवा में जोड़ें। अगर कुछ समय होता है तो समय का उपयोग करते हैं किस लिए, भगवान के गुणगान में। तो महात्मा का यही भाव रहता है कि वो स्वयं भगवान की सेवा में जुड़े रहे और दूसरों को भी जोड़े किसमें, भगवान की सेवा में। ये रहता है महात्मा का भाव। तो जब महाराज रघुनाथ कह रहे हैं आप भगवान से अभिन्न हो, तो महात्मा भक्त भगवान से अभिन्न है, क्योंकि 100% उनके मन में वही भाव है जो भगवान के मन में है। और भगवान के मन में क्या भाव, भक्त के मन में क्या भाव है, सबको भगवान के चरणों में ले जाना। जैसे भगवान ने गीता में कहा, सर्वधर्मा परित्यज मामेकं शरणमजा हम त्वं तव सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा सितः। और भगवान के जो भक्त हैं वो हर स्थिति में भगवान का ही चिंतन करते हैं। जैसे कि आपने भागवतम के इस अध्याय में, इस स्कंद में पढ़ा, जन भारत एक समय एक खेती की देखभाल कर रहे थे, क्योंकि जब उनके पिता का देहांत हुआ तो उनके सौतेली भाइयों ने उनको ज्यादा आदर नहीं दिया। उन्होंने कहा इधर गूंगा और बहरा है, भेज दो इसे खेती की चौकीदारी करने के लिए। तो वहां कई डाकू थे, और इन डाकू ने एक बहुत खूबसूरत व्यक्ति को पकड़ा था और काली के चरणों में भोग लगाने लगे थे उस व्यक्ति का, इस उद्देश्य के साथ कि उनके जो गुरु हैं उनको एक पुत्र प्राप्त हो। अच्छे शिष्य थे। तो वो एक बड़े खूबसूरत व्यक्ति को पकड़ के ले आए थे और काली के चरणों में बलि से काट कर भोग लगाने लगे थे। तो जैसे भोग लगाने लगे थे ये व्यक्ति भाग गया। सब डाकुओं को धोखा देकर भाग गया। तो सारे डाकू भागे उनके पीछे, और गलती से जन भारत को उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने कहा, उन्होंने सोचा कि यही था वो व्यक्ति जो भाग गया हमारे हाथ से। तो वो बेचारे जन भारत, उन बदमाशों ने जन भारत को पकड़कर ले आए इस विचार के साथ कि हम उस डाकू की बजाय जद भारत को काली के चरणों में अर्पण करेंगे। तो जद भारत की जान को क्या खतरा था, चारों तरफ डाकू थे बड़ी बड़ी बलियों के साथ, और उन्होंने पहले जद भारत को मालिश की। जैसे आप लोग जब भोग लगाते हो भगवान को फल का, तो पहले धोते हो ना अच्छी तरह, बाजार से लाकर सीधा तो ऑल्टर में नहीं डालते, अब पहले धोते हो, फिर काटते हो, फिर छिलका निकालते हो, फिर भगवान को भोग लगता है मंत्रों के साथ, है ना। तो इन असुरों का भी ऐसा ही स्वभाव है। पहले उन्होंने जद भारत को स्नान करवाया, फिर उसका मसाज किया अच्छी तरह, फिर उसको नए वस्त्र पहनाए, और फिर वो तैयार हो रहे थे उसे बलि से काटने के लिए। पर जब भारत बिल्कुल स्थिर थे भगवान के चिंतन में, बिल्कुल घबराई नहीं। अगर कोई और होता तो क्या कहता, बचाओ बचाओ बचाओ। पर जब भारत बिल्कुल जुड़े हुए थे किसमें, भगवान के चिंतन में, जैसे कि आप भागवतम में अमरीश महाराज की कथा पढ़ते हो, जब दुर्वासा मुनि एक राक्षस पैदा किया अमरीश को जलाने के लिए, अमरीश महाराज बिल्कुल घबराए नहीं। सर्व मना कृष्णा पधार अरविंदयो, हे मेरा मन सदा भगवान के चरण कमलों का स्मरण करे। तो उसी प्रकार जब भारत हालांकि इतनी भयंकर कठिन स्थिति में थे, वो बिल्कुल घबराए नहीं, वो जुड़े हुए थे किसमें, भगवान के चरण कमलों का चिंतन करने में। और जैसे ही उन्होंने डाकुओं ने बलि को उठाया उन्हें काटने के लिए, देवी कली मूर्ति को से बाहर निकल गई, उसी चाकू बलि को लेकर उन्होंने डाकुओं को काट दिया। तो ये उदाहरण इसलिए दिया ये बताने के लिए कि जब भारत किस प्रकार से भगवान के शरणागत थे। तो महाराज रघुघना उनकी शिक्षा से बड़े प्रभावित हुए, और उनकी शिक्षा से बड़े प्रभावित हुए क्यों, क्योंकि महाराज रघुघना के पास भी आध्यात्मिक ज्ञान था। आखिर महाराज रघुघना कहां जा रहे थे, कथा सुनने के लिए कपिल आश्रम में। तो महाराज रघुघना कह रहे हैं, हे महात्मा आप परम भगवान से अभिन्न हो। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में ब्रह्म संहिता के प्रसिद्ध श्लोक का उच्चारण कर रहे हैं। ब्रह्म संहिता की रचना ब्रह्मा जी ने की थी, और बड़े सुंदर स्तुतियों के द्वारा ब्रह्मा जी स्थापित कर रहे हैं क्या, कृष्णात्यु भगवान स्वयं। तो इस प्रसिद्ध ग्रंथ में ब्रह्मा जी कहते हैं, ईश्वर परमा कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादि अनादि गोविंद सर्वकर्ण कारणम। अनेक ईश्वर हैं पर एक ही परमेश्वर है, और वो कौन है, ईश्वर परमा कृष्ण। और ये सचिदानंद विग्रह इटर्नल फुल ऑफ नॉलेज एंड ब्लेस, और वो है क्या, हर चीज के कारण। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में ये कह रहे हैं, सर्व कारण कारण, परम भगवान जो है हर चीज के कारण है। तो भक्त जो है ये स्वीकार करता है कि परम भगवान है हर चीज के कारण, वो है असली स्वामी। इसलिए भक्त का यह भाव रहता है कि अगर मेरे पास संपत्ति है, अगर मेरे पास सफलता है, तो इसे मुझे उपयोग करने दो। किसकी सेवा में, भगवान की सेवा में। भोक्तराम यज्ञ तपोसम सर्वलोक महेश्वरम, वो है असली भोक्ता परम भगवान। तो परम भगवान है हर चीज के कारण। भौतिकवादी क्या ये विचार सोचते हैं, नहीं। अगर किसी क्षेत्र में सफलता प्राप्त हो जाए, जैसे इस समय अच्छी वर्षा आ रही है भारत में, तो क्या कहते हैं, हमारे सुंदर शासन के कारण ये वर्षा आ रही है। और जब वर्षा नहीं आए, प्रकृति द्वारा कुछ कष्ट हो, हम क्या कर सकते हैं, प्रकृति कष्ट दे रही है। जब सफलता हो तो इसका क्रेडिट हमने लेना है, और जब कठिनाई हो तो इसका इल्जाम भगवान को दे दो। तो जो भक्त है वो हर स्थिति में स्वीकार करता है क्या, कि परम भगवान हर चीज के कारण है, और वो है असली भोक्ता। प्रभुपाद जी ने कहा, कृष्ण भक्ति में सफलता प्राप्त करना बड़ा कठिन है, ये स्वीकार करो परम भगवान हर चीज के असली स्वामी है, वो असली हर चीज के भोक्ता है, और हम सबका कर्तव्य क्या है कि हम सदा उनकी सेवा में जुड़ें। अगर हम इस भाव से रहेंगे और इस भाव से हर कार्य करोगे तो आवश्यक ही आध्यात्मिक क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त कर सकोगे। तो महाराज रघुनाथ कह रहे हैं, हे महात्मा तुम परम भगवान से अभिन्न हो। तो हमें इसके द्वारा ये नहीं सोचना चाहिए हम भगवान से अभिन्न हैं तो हम भी भगवान हैं। कई मायावादी कहते हैं ना, तुम भगवान हो हम भगवान हैं सब भगवान हैं। नहीं, हम भगवान से अभिन्न इस दृष्टि में हैं कि हम 100% भगवान के शिक्षा को स्वीकार कर रहे हैं। वो 100% जो उपदेश भी दिया जाए, ये उपदेश है किसके आधार पर? भगवान की शिक्षा के आधार पर। इस रूप से महात्मा भक्तों को ये कहा जाता है कि वो परम भगवान से अभिन्न है। आगे वो क्या कहते हैं, आपके प्रभाव से जो शास्त्रों की शिक्षा जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो दूर हो गई है। दूसरे शब्दों में भगवान के जो महात्मा भक्त हैं वो जगलरी नहीं करते। जैसे भौतिक समाज में आप कहोगे चार व्यक्ति गीता पढ़ेंगे, चार अपना अपना भाव अर्थ देंगे, है ना। गीता के 600 से अधिक अनुवाद हैं, पर आप देखोगे कि हर अनुवादक ने अपना भाव प्रकट किया है। कई बार लोग कहते हैं, तुम कहते हो ये तुम्हारा भगवान है, ये कहते ये भगवान है, किसको हम स्वीकार करें। जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया, उस दिन मैंने सूरत में दादा भगवान की किताबें देखी, फिर वहां आश्रम बाबू की एक भगवद गीता है, रामायण है, फिर कई और नाम के संतों ने अलग अलग रूपों से अलग अलग प्रसिद्ध ग्रंथों का अनुवाद किया है, और हर अनुवाद में वो अपना भाव प्रकट कर रहे हैं, कि नहीं। पर जो भगवान के भक्त हैं वो एक ही भाव प्रकट करते हैं। तो यहां महाराज रघुनाथ बड़ा महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं। वो कह रहे हैं आपके पवित्रता के कारण जो कि अलग अलग भाव शास्त्रों से निकल रहे हैं ये दूर हो गए हैं। जैसे कि प्रभुपाद जी ने जब भगवद गीता प्रकाशित की तो किस नाम से प्रकाशित की? भगवद गीता एज इट इज, यथारूप। तो कई बार लोग पूछते हैं आपकी यथारूप और दूसरी गीताओं में क्या अंतर, पूछते हैं। तो अंतर क्या है? प्रभुपाद जी इस विषय की चर्चा करते हैं भूमिका में। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि यहां उन्होंने भगवद गीता के संदेश को उसी भाव से प्रस्तुत किया है जिस भाव से भगवान ने अर्जुन को दिया और अर्जुन ने स्वीकार किया। तो दूसरे शब्दों में भगवान के जो महात्मा भक्त हैं वो भगवान के विचारों को बिल्कुल शुद्ध रूप से प्रस्तुत करते हैं और इस कारण लोगों को असली संदेश मिलता है। तो इस विषय में रूप गोस्वामी जी कहते हैं, श्रुति स्मृति प्राण आदि पंचरत्न विधि बिना एकांत की हरि भक्ति पाता है वह कल्पते। कि जो धर्म श्रुति और स्मृति पर निर्भर नहीं हो वो केवल समाज में कंफ्यूजन पैदा करेगा, और जो धर्म श्रुति और स्मृति पर निर्भर हो वो आपको असली संदेश देगा। तो आज के वातावरण में आप क्या देखते हो? अनेक धर्म के प्रचारक है, अनेक। अगर आप वृंदावन में जाओ हर 10 कदम में आपको एक भागवत कथा का बिलबोर्ड दिखेगा, है ना। भारत के किसी शहर में जाओ हर स्थान में कोई संत महात्मा की तस्वीर होगी। पर अगर आप इनके संदेश को देखो तो देखोगे हर व्यक्ति अपना अपना भाव प्रकट कर रहा है, पर जो भगवान के महात्मा भक्त हैं वो उसी भाव को प्रकट करते हैं जो भगवान ने प्रकट किया हो। उदाहरण के लिए जब श्रील प्रभुपाद इन ग्रंथों का तात्पर्य लिखते थे तो श्रील प्रभुपाद अपने सामने जो पहले आचार्य थे उनके तात्पर्य को सामने रखते थे और उनके तात्पर्य को पढ़कर उन तात्पर्यों से जो महत्वपूर्ण संदेश है भाव है उसे लेकर प्रभुपाद जी ने सरल शब्दों में तात्पर्य में प्रस्तुत किया। तो ये है महात्माओं का लक्षण कि वह अपने विचारों को प्रकट नहीं करते, वो वही विचारों को प्रकट करते हैं जो कि गुरु ने दिया, शास्त्र ने दिया और साधु ने दिया। गुरु, साधु, शास्त्र, थ्री पैरेलल ट्रैक्स। ये गुरु, साधु, शास्त्र, शास्त्र का अर्थ है भगवान की वाणी, साधु का अर्थ है जो महात्मा जो हमें संदेश दे रहे हैं, और गुरु जो कि अपने आप को साधु और भगवान का दास समझते हुए उसी विचार को प्रस्तुत करता है जो कि भगवान ने प्रस्तुत किया हो। तो यहां महान रोगना कह रहे हैं कि आपकी पवित्रता के प्रभाव से जो अलग अलग विचार लोग प्रस्तुत कर रहे थे शास्त्रों का, ये सब दूर हो गया है। अब मुझे स्पष्ट रूप से समझ आ रहा है क्या कि मेरा क्या कर्तव्य होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पिछले अध्याय में जद भरत ने स्पष्ट समझाया, आज आपके मन में बड़ा गौरव है, आप सोचते हो आप राजा हो मैं दास हूं, पर कल ये स्थिति बदल सकती है, मैं आपकी कुर्सी में हो सकता हूं, आप मेरी कुर्सी में। दूसरे शब्दों में जद भारत ने समझाया कि हर चीज अस्थाई है, हम क्या है घमंडी हो जाते हैं। कोई आप धनी व्यक्तियों के पास जाओ, आध्यात्मिकता की चर्चा करो, वो रुचि लेते हैं नहीं। आप अगर कुंभ मेला में भी जाओ और किसी कथा धार्मिक कार्यक्रम में जाओ, अब देखोगे ज्यादातर गरीब और मिडिल क्लास लोग हैं, जहां के बड़े धनी लोग हैं वो आते हैं नहीं। आते भी हैं तो एक मिनट के लिए, क्यों? सोचते हैं धन के द्वारा हर सुविधा प्राप्त हो सकती है, भूल जाते हैं ये धन मिला है पूर्व जन्म के असली अच्छे संस्कारों के कारण, पर ये धन की जो सुविधा है अस्थाई है, थोड़े समय के लिए ही रहने वाली है। तो जब भारत ने पिछले अध्याय में रघुनाथ महाराज को ये उपदेश दिया है कि एक शरीर के द्वारा घमंड रखना मूर्खपन है। आखिर ये शरीर है क्या? प्रभुपाद जी कई बार बाइबल का एक कोटेशन देते थे, दस दाय आठ एंड दस दाउ शैल बिकम। तो बाइबल में कहा गया है तुम्हारा जो शरीर है ये धूल है, मिट्टी है, वह मिट्टी बन जाएगा। आज आप बड़ा घमंड रखते हो, आईने के सामने खड़े होते हो, महंगी महंगी परफ्यूम लेते हो, महंगे महंगे वस्त्र लेते हो। एक हमारा भक्त है मॉस्को में जो लोगों के सूट बनाता है, तो कहते हैं एक एक सूट बनाता है कईयों का $40,000 का। तो $40,000 में कितना सूट, कौन सा कपड़ा, सोने का कपड़ा होगा। तो मैं ऐसे कह रहा हूं कि जब हमारे पास कोई धन हो, सुविधा हो, हम क्या इसे बड़े प्रभावित हो जाते हैं, है कि नहीं? तो जद भारत ने पिछले अध्याय में रोगना की अज्ञानता को दूर किया। उन्होंने कहा इस भौतिक शरीर का घमंड रखना बेकार है। तो दस दयाल दस अवसल बेकाम, चाहे आप हिंदू हो, हिंदुओं में हम शरीर को जला देते हैं, जलाकर शरीर क्या बन जाता है, मिट्टी। मुसलमानों में, क्रिश्चियंस में हम शरीर को दबाते हैं, उसे भी बाद में चीटियां जाकर खा लेती हैं तो धूल बन जाता है। जो पारसी हैं तो वो क्या करते हैं, वो शरीर को कुएं में फेंकते हैं, और फिर जो बाज है देखती है, हा बाज आकर खा लेती है, और फिर उसे मल के रूप में फिर वो मिट्टी में मिल जाता है। तो चाहे आप हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, कि धनी हो, गरीब हो, ये शरीर अंत में क्या बनता है, मिट्टी बन जाती है। आज हम बड़ा घमंड रखते हैं, इतना खूबसूरत शरीर है। हम किसी व्यक्ति को कहो तुम तो बड़े खूबसूरत नजर आते हो तो बड़ा खुश हो जाता है, और अगर किसी को कह दो तुम तो आज बदसूरत दिख रहे हो तो क्रोधित हो जाता है। तो ये भौतिक देह केवल थोड़े समय के लिए हमारा साथी है। तो यही भाव जिस भारत ने पिछले अध्याय में बड़े गहराई के साथ महाराज रोगणा को प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा मन को भगवान की सेवा में लगाओ, मन द्वारा भगवान की सेवा करो। उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से कहा मन के द्वारा क्या करो, भगवान की सेवा करो। तो महाराज रोगणा बड़े प्रभावित हुए जग भारत की शिक्षा के साथ। ये है भक्त का लक्षण, जो भक्त भगवान का वो प्रसन्न होता है भक्तों की संगत में आकर। जैसे महाराज रोगणा बड़े प्रसन्न हुए जग भारत की संगत में आकर, बड़े प्रसन्न हुए जब उन्होंने जग भारत की शिक्षा सुनी। तो प्रभुपाद जी कहते थे आप व्यक्ति को पहचान लेते हो जब वो अपना मुंह खोलता है। तो जब जग भारत ने अपना मुंह खोला तो रोगणा पहचान गए, अरे ये तो आत्मज्ञानी व्यक्ति है। मैं सोचा मैं नौकरों ने कहा ये गूंगा और बहरा है, पर ये तो गूंगा और बहरा नहीं दिखता, ये तो आत्मज्ञानी दिखता है। तो जब व्यक्ति उपदेश दे तो हम उसे पहचान लेते हैं। तो आगे कहते हैं कि एक ब्राह्मण के मित्र के वस्त्र में आप अपना असली आध्यात्मिक स्थिति जो है वो छुपा रहे थे। तो जद भारत तो शुरू से आत्मज्ञानी थे, वो जद भारत ने निर्णय कर लिया था कि इस जीवन में मैंने वो गलती नहीं करनी जो पहले कर चुका हूं। तो मैं समाज में कैसे व्यवहार था, जैसे वो गूंगे हैं और बहरे हैं, ये एक्टेड एज ही वॉज डेफ एंड डम, पर वो गूंगे बहरे थे नहीं। पहले तो लोगों ने उनकी हंसी उड़ाई, जब गूंगे बहरे का व्यवहार कर रहे थे तो लोग उन पर हंसते थे, कई लोग थाना मारते थे कि एक गूंगा व्यक्ति आ गया, बहरा व्यक्ति आ गया, पर वे गूंगे बहरे नहीं थे। तो महाराज रोगणा कह रहे हैं कि आप एक ब्राह्मण के मित्र के रूप में आप अपने असली आध्यात्मिक ज्ञान को छुपा रहे थे। तो जो भक्त है भगवान का, उसके मन में भी ये भाव रहना चाहिए जो जद भारत के मन में था। यहां जो व्यवहार जद भारत ने दिखाया, जद भारत दिखा रहे हैं कि हमें भौतिक कार्यों के लिए गूंगे और बहरे होना चाहिए। पर जब जद भारत ने देखा कि प्रचार का मौका है, अपॉर्चुनिटी टू प्रीच, तो शेर जैसे बोलने लगे। जब उन्होंने शेर जैसे बोला तो महाराज रोगणा समझ गए, अरे ये मूर्ख पर व्यक्ति नहीं, ये तो आत्मज्ञानी है। तो उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति आपके निकट आता है भौतिक विषयों की चर्चा करने के लिए, भौतिक विषयों की गुणगान करने के लिए, आप गूंगा और बहरे बन सकते हो। पर जब आपको मौका मिले भगवान का उपदेश देने के लिए, तो जब आप शेर जैसे बोल सकते हो, इस प्रकार आप जद भारत के समान माया से बचे रहोगे। जद भारत ने एक गलती कर दी थी पिछले जन्म में, तब ये गलती फिर से नहीं करना चाहते थे। तो उसी प्रकार हम सब ने अनेक गलतियां की हैं, पर अब जो हम भक्ति में जुड़े हैं हमें फिर से गलती नहीं करनी चाहिए। जैसे एक समय श्री प्रभुपाद जी किसी को दीक्षा दे रहे थे, इस व्यक्ति का जरा पाप का धंधा था पहले, तो प्रभुपाद जी ने दीक्षा देते हुए कहा, माला देते हुए कहा, नाउ नो मोर सिनिंग, अभी और कोई पाप नहीं। तो उसी प्रकार हम सब जो जुड़े हैं भक्ति में, हमारा ये भाव होना चाहिए कि हमने अनेक जन्मों में गलत अपराध किए हैं, पर अब हमने फिर से वो गलती नहीं करनी। और वो गलती नहीं करनी मतलब दृढ़ होकर हमारा स्वभाव ऐसा रहना चाहिए कि हम सदा भगवान का ही चिंतन करें। तो महाराज रघुनाथ कह रहे हैं कि मैं आपको प्रणाम करता हूं क्योंकि आप महात्मा भक्त हो, क्योंकि आपके मन में केवल कृष्ण भगवान की सेवा है, आपके मन में केवल उनके प्रति सेवा है, क्योंकि हर चीज के कारण है। तो हम सबके मन में इस प्रकार का भाव होना चाहिए, भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं भगवान से अभिन्न हैं, और जो भगवान से अभिन्न हैं उन्हें हम महात्मा कहते हैं, और उन्हें कई बार भगवान से भी नाम लेकर पुकार देते हैं। तो आप कहोगे, आप कह रहे हो भगवान के शुद्ध भक्त जो कि जिनके मन में केवल यही भगवान की सेवा का विचार है उन्हें हम भगवान भी बुला सकते हैं, तो हम दादा भगवान की नहीं बुला सकते इनका नाम पहली बार सुना तो हम दादा भगवान की नहीं बुला सकते तो नहीं बुला सकते। क्यों? क्योंकि उनका जो संदेश है भगवान की शिक्षा के आधार पर नहीं, और जो प्रमाणिक अवतार हैं उनका वर्णन कहाँ है? शास्त्रों में है। हम शास्त्रों के आधार पर स्वीकार करते हैं कौन है प्रमाणिक अवतार और कौन है ढोंगी अवतार। और जब ये ढोंगी अवतार से परिचय होता है तो नहीं, आप कह सकते हो जब भगवान प्रकट हुए उन्होंने इस प्रकार की लीलाओं को प्रस्तुत किया, आप कर सकते हो। एक समय में एक सभा में गया था दिल्ली में कई साल पहले, तो एक संत महात्मा ने कहा, आप इस्कॉन वाले कहते हो कृष्ण भगवान परम भगवान है, हम भी कृष्णा हैं, हमें भगवान क्यों नहीं मानते। तो हमने कहा, अगर आप भी कृष्णा हो तो आप भगवान की अद्भुत लीलाओं का की नकल करो। उदाहरण के लिए भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया था बाएं हाथ के छोटी उंगली की नाखून के बल पर, आप चलो आपको छूट देते हैं, दो हाथों से उठा लो गोवर्धन पर्वत। तो वो कहने लगे, आज नहीं उठाया तो ये मतलब नहीं कल नहीं उठा सकेंगे। तो हमने कहा उनसे आगे, तो आपको कितने साल चाहिए? 10, 20, 30 साल। तो फिर वो उतर नहीं दे पाए। तो भगवान के जो ढोंगी अवतार हैं उनको पहचानना कठिन नहीं है, क्योंकि जो प्रमाणिक अवतार हैं उनका वर्णन कहाँ है? श्रीमद् भगवत में। और ऋषभदेव भगवान कौन है? भगवान के प्रमाणिक अवतार हैं। तो संक्षेप में इस अध्याय में महाराज रघुनाथ जग भारत का आभार प्रकट कर रहे हैं, इस श्लोक में उनका आभार प्रकट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जग भारत ने उन्हें बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षा दी, जिसके द्वारा जो गलत भाव भी था उनके मन में वो दूर हो गया। तो वो है शुद्ध भक्तों का भाव। जैसे इस्कॉन के साथ जब भक्त जुड़ते हैं तो थोड़ी देर के बाद ही उनको समझ आ जाता है कृष्ण भगवान परम भगवान है। हम सब पले हैं उस भावना में, सब भगवान एक है ना। आप सब जो इस्कॉन में आने से पहले क्या शिक्षा दी गई थी आपको? क्या सब भगवान एक ही हैं? हाँ, किसी रास्ते पर भी चलो नतीजा तो एक ही है। पर फिर जब आप इस्कॉन में आए, प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया, भक्तों की संगत में आए, तो आपको समझ आ गया क्या? एकल ईश्वर कृष्ण आर सबृतया, एक परम भगवान है, बाकी सब कौन है? उनके सेवक हैं। तो उसी प्रकार जग भारत ने जो जो अलग अलग धार्मिक भाव थे रघुनाथ के हृदय में सबको दूर कर दिया और ये स्थापित कर दिया क्या कि कृष्ण भक्ति ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो ये है साधु संगत का लाभ। जब आप साधु संगत में आते हो, भक्तों की संगत में आते हो, शुद्ध भक्तों की संगत में आते हो, तो आपको असली संदेश मिलता है। आज विश्व के किसी कोने में भी कोई इस्कॉन के मंदिर में आता है, उसको स्पष्ट एक ही शिक्षा दी जाती है, कृष्ण इज द सुप्रीम लॉर्ड। ये नहीं कि बॉम्बे में कृष्ण इज द लॉर्ड, दिल्ली में शिवजी इज द लॉर्ड और लंदन में कोई और। सब मंदिरों में एक ही उपदेश दिया जाता है ना, चैंट हरे कृष्णा, रीड गीता भागवतम, सोशल मीडिया। तो हमें भी जद भारत के उदाहरण से प्रेरणा लेनी चाहिए और हमारा भी भाव होना चाहिए कि हमने इस जिंदगी में किसी प्रकार से भौतिक कार्यों के प्रति आकर्षित नहीं होना, पर हमें केवल भगवान के भक्तों की संगत में रहने का भाव होना चाहिए। और हम सब शुद्ध भक्ति के मार्ग में ही जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि यही एक माध्यम है भगवान को आकर्षित करने के लिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ठीक है, मुझे अभी जाना है 5 मिनट में। हाँ, एक दो प्रश्न लूंगा फिर मुझे जाना है।
हाँ, हरे कृष्णा। और जब जो वैष्णव अपराध है, ये तो कलयुग है ना।
हाँ,
कलयुग तो सब वैष्णव जितना सब भक्त है सब।
हाँ,
लेकिन अपराध क्यों करते हैं वो? मैं एक दिन भी एक क्वेश्चन पूछा था देवनंदन को, जैसे बोला कि हनुमान भी कथित थे, तृतीय युग का बात है
क्या?
अर्जुन भी कथित थे, वो तो द्वापर युग का बात है, ये तो कलयुग है। कलयुग में क्यों अपराध होगा?
क्या आपने सुना ही नहीं दिया?
नहीं, कलयुग में भक्तों के पास क्यों अपराध होता है?
कलयुग में क्या
अपराध
क्यों होता है?
भक्त तो शुद्ध है ना।
हनुमान जी बोल रहे कि हनुमान जी भी बहुत क्रोधित हुए थे, लंका जला दिए और बाद में
उन्होंने लंका जलाया क्योंकि रावण को सबक सिखाने के लिए। उस प्रकार का क्रोध ठीक है। चैतन्य महाप्रभु जी क्रोधित हो गए थे जब उन्होंने देखा कि नित्यानंदा के ऊपर मनाही ने पत्थर फेंका है, तो उस स्थिति में आप क्रोधित हो सकते हो। पर आपका जो पहला प्रश्न था, कलयुग में इतना अपराध क्यों है? हाँ, पर कलयुग में एक लाभ यह भी है कि हमारे पास प्रभुपाद जी जैसे महान संतों के ग्रंथ हैं, शुद्ध भक्तों की संगत है, जिसमें हमें यह ज्ञान मिलता है कि किस प्रकार से हम अपराध से बच सकते हैं। ठीक है ना? ओके, लास्ट क्वेश्चन, मुझे जाना है। हाँ,
हरे कृष्ण महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। खूब सुंदर रीति आपने बताया प्रभुपाद के ग्रंथ और जप के बारे में, वैष्णव अपराध के बारे में। महाराज जी, मैं भी कभी कई बार देखता हूँ कि जो हमारे भक्त जो इस्कॉन में है वो भी कई अलग अलग ग्रंथों पढ़ते हैं प्रभुपाद के सिवाय, तो क्या वो माया में है?
मैं तो सबको कहता हूँ प्रभुपाद जी के ग्रंथों में पूरा ज्ञान है, उनके बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। मैंने तो कभी कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा प्रभुपाद जी के ग्रंथों के बाहर। तो कई बार भक्तों को लगता है प्रभुपाद जी के ग्रंथ ज्यादा बेसिक है, हमें तो ज्यादा ऊंचा राष्ट्र चाहिए। तो राधा कुंज प्रभुपाद जी ने हमें जो शिक्षा दी है वो भविष्य के 10,000 सालों के लिए है, और उन ग्रंथों में पूरा ज्ञान है, बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। और बाहर की किताबें पढ़ोगे तो और कंफ्यूज हो गए। हाँ, यस सर, आफ्टर दिस आई हैव टू स्टॉप।
हरे कृष्णा, प्रभुपाद जी का ग्रंथ पढ़ने के बाद दूसरा ग्रंथ पढ़ने का रुचि नहीं रहता है।
हाँ, वेरी इंटेलिजेंट मैन। जिसने श्रद्धा से प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ा है वो देख लेगा कि इन ग्रंथों में पूरा ज्ञान है और किसी चीज की कमी नहीं। ओके, हरे कृष्णा। पीछे आपको सुनाई दे रहा था? हाँ, समझ आ रहा था? माताओं को भी समझ आ रहा था? मैंने जोर से नहीं बोला क्योंकि मैं जोर से बोलूंगा तो गला बैठ जाएगा और हरे कृष्णा।